समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार।
जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट ना हो। बस जिंदगी की चुनौतियों को हंसते मुस्कुराते हुए पूरा किया जाए, खुद भी खुश रहा जाए और दूसरों को भी खुश रखा जाए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। इसी सुविचार के साथ हफ्ते की पहली नई सुबह, नए दिन और ढेर सारी नई चुनौतियों के साथ समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे प्रस्तुत करने आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार रवि, नमस्कार विज्ञान, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे विद मी शगुन चोपड़ा एंड रवि कपूर। वेल यस लिसनर्स, एज द सॉन्ग सजेस्ट्स, लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड टू द फुलेस्ट। वी आर मेंट टू एंजॉय द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, सो रिमेंबर द पर्पस ऑफ लाइफ आफ्टर ऑल इज टू लिव इट with vigor and vitality and of course lots of happiness and counting your blessings, be grateful for everything. So with that, let's begin with our program. First, we'll give you the latest national and international news. Listeners, we'll also be providing you metro city updates and the historical information which is related to today, that is 30th of June. First, let's begin with the headlines.
Ji bilkul.
President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttar Pradesh beginning today. During her visit, she will grace various events in Bareilly and Gorakhpur. We have a report.
On the first day of her visit, President Draupadi Murmu will attend the 11th convocation ceremony of the Indian Veterinary Research Institute in Bareilly. Jharkhand Governor Santosh Gangwar, who hails from Bareilly, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, Union Minister of State for Agriculture Bhagirath Chaudhary will also attend the event. After attending the event, President Draupadi Murmu will fly for Gorakhpur. In Gorakhpur, she will attend key events at three major institutions and cover 129 km across the city by road in 2 days. President will grace the inaugural convocation of AIIMS Gorakhpur, where she will confer medals on meritorious students. On the second day, June 1, the President will inaugurate Uttar Pradesh first Mahayogi Guru Gorakhnath Ayush University. Om Awasthi, Akashwani News, Lucknow.
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हथियारबंद माओवादियों से किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने तेलंगाना के निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की हत्या करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। गृहमंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान किया।
सारे लोग हथियार छोड़ दो और सरेंडर करो, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमने तय किया है 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। हमारी सरकार का नीति है, जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी।
गृहमंत्री ने 31 मार्च 2026 तक भारत को उग्रवाद से मुक्त करने के केंद्र के संकल्प को दोहराया।
The University Grants Commission, UGC, has issued a notice to 89 institutions across the country, including 4 IITs, 3 IIMs and Aligarh Muslim University, for failing to comply with anti-ragging regulations. As per the UGC regulations on ragging 2009, every institution affiliated with UGC is required to submit compliance undertaking and anti-ragging undertakings from students. According to the notice, these institutions have not submitted the mandatory anti-ragging undertakings from students and the compliance undertakings from institutions, despite repeated advisories and follow-up calls. Compliance with the UGC regulation on ragging 2009 is mandatory for all higher education institutions. Non-compliance not only breaches UGC guidelines but also endangers student safety, especially amid rising concerns regarding ragging-related distress and hostile campus environments.
Aur Shagun, agli khabar Kailash Mansarovar yatra se sambandhit hai.
सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम।
कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के अंतराल के बाद आज से शुरू हो रही है। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। इस वर्ष ये यात्रा सिक्किम में नाथुला पास और उत्तराखंड में लिपु लेक के पास के मार्ग से आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा जून जुलाई और अगस्त महीने में जारी रहेगी। हिंदू जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास माना जाता है। सिक्किम सरकार तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन केंद्रों सहित बुनियादी ढांचों का विस्तार कर रही है और शगुन 5 लंबे सालों की लंबी प्रतीक्षा के बाद हिमालय की घाटियों में फिर से भक्ति और प्रार्थना की गूंज सुनाई देने लगी है। आज से कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर, जैसा कि हमने बताया, शुरू हो रही है। ये सिर्फ एक यात्रा ही नहीं है बल्कि आस्था का वो रास्ता है जो बादलों के बीच से निकलकर भगवान शिव के पवित्र धाम तक जाता है और अब ये रास्ता फिर से खोल गया है।
Also, well, yes, we are talking about it on a Monday, which is considered an auspicious day to worship Lord Shiv, right? How wonderful is that?
बिल्कुल। और यही नहीं, शगुन इस यात्रा के लिए सिक्किम सरकार ने भी काफी तैयारियां की हैं। रास्तों की हालत सुधारी गई है और नई सुरक्षा सुविधाएं और अक्लेमेटाइजेशन सेंटर्स यानी कि ऊंचाई में सांस लेने की आदत डालने वाले केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी सुरक्षित रहे।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका जाएंगे। वे वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के निमंत्रण पर कल होने वाली क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड समूह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के नए प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पहलगांव हमले के बाद क्वाड मंत्रियों की ये पहली बैठक होगी। डॉ जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म विषय पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें आतंकवादी कृत्यों के विनाशकारी प्रभाव होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए की गई कार्रवाई को दर्शाया गया है। ये आयोजन पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने से ठीक 1 दिन पहले हो रहा है।
The head of the United Nations nuclear watchdog has cast serious doubt on claims that recent US airstrikes obliterated Iran's nuclear program. In an interview to a TV channel, Director General of International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, said that Tehran still retains the capacity to resume uranium enrichment within months. He said, while damage from the US aerial strikes was severe, but it fell short of total destruction. His remarks contradict repeated statements by US President Donald Trump, who claimed that America completely and totally obliterated Iran's nuclear infrastructure. He explained that Iran retains the technological and industrial base required to revive its enrichment activities. Now, we are moving to the world of sports for our listeners. Well, in badminton, 20-year-old Ayush Shetty became the first Indian this season to clinch a BWF World Tour title, winning the US Open 2025. We have a detailed report. Listen in.
Ayush capped off his dream run with a commanding 21-18-21-13 victory over Canada's Brian Yang in the final. Playing with confidence and precision, Shetty dominated the match, keeping the Canadian shuttler on the back foot from the outset. His triumph in the final came on the heels of an electrifying semi-final performance where he pulled off a massive upset by defeating world number 6 Chao Tien Chen. With this title, Shetty not only opens his BWF World Tour account but also delivers India its first men's singles title on the BWF Tour on foreign soil since the Canada Open 2023. However, in the women's singles, Tanvi Sharma's remarkable run ended with a runner-up finish after a hard-fought 3-game battle against top seed Biwen Zhang. The unseeded 16-year-old, playing in her first BWF World Tour final, showed showed great promise but faded in the decider. Meanwhile, in the FIH Pro League, Indian women's hockey team suffered their 8th consecutive defeat, losing 2-3 to China in Berlin last night. With this defeat, India finished at the bottom of the 9-team standings, earning just 10 points from 16 matches. Nitya Frankel, Sports Desk, Akashwani, Delhi.
तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शगुन चोपड़ा।
Yes, of course, Ravi. I'll begin with Chennai.
जी।
A full-scale emergency mock drill was held on Saturday at the OTA premises on GST Road. The drill stimulated an aircraft crash based on the recent Ahmedabad incident. A mock plane was set on fire and fire services, NDRF teams and medical staff responded as part of the exercise. Victims were rescued, treated for burn injuries and rushed away in ambulances. CISF personnel secured the area while the bomb squad checked luggage for explosives. Traffic on GST Road was disrupted for about an hour to allow emergency vehicles to pass. The scenario assumed 50 passengers and 5 crew members on board. I have one more update there from Chennai. Mm-hmm. Well, this is very interesting. A 3D facial reconstruction technology is used to recreate the faces of 2 ancient individuals. Well, researchers from Madurai Kamaraj University and Liverpool John Moores University in the UK, they have successfully recreated the faces of 2 ancient individuals. The skulls were excavated from Kondagai, a burial site near the Kiladi archaeological site in Tamil Nadu's Sivaganga district. Professor Caroline Wilkinson, director of the Face Lab at Liverpool John Moores University, she explained that CT scans of the skulls were used to rebuild facial features based on anatomical standards. While the upper parts of the faces were reconstructed with greater accuracy, while the lower halves, which were missing the jaws, they were estimated using orthodontic measures. The measurements. The DNA analysis of the skulls, they showed traces of ancestry from West Eurasian hunter-gatherers and Austroasiatic populations. However, more genetic studies are needed to confirm the ancestry. Also telling you that the Kiladi site, located about 12 kilometers southeast of Madurai, dates back to the 6th century BCE and is considered one of the region's earliest urban settlements.
Gee.
Now we are moving to Bengaluru listeners. Karnataka Governor Thavarchand Gehlot has emphasized the need for closer collaboration between educational institutions and industries to bridge the gap between education and employment. Speaking at the PUNK 2025 conference in Bengaluru, he said India's youth must be equipped with global skills. The governor highlighted the importance of aligning academia with industry to ensure students gain practical knowledge and industries get a skilled workforce. He noted that today's global workforce is creative, digitally skilled and proficient in areas like AI, data science and sustainability. To close the skill gap, the governor suggested internships, project-based learning, live case studies and regular industry-academia interactions. Now, let's head to Hyderabad.
Ji.
The BJP has issued the notification for the election of its Telangana State President and National Council. As per the notification, the nominations, they will be accepted from 2 p.m. to 4 p.m. today and the nominations can be withdrawn between 4 p.m. and 5 p.m. Former BJP MLA Yendala Lakshmi Narayana, who is the state election officer, said Union Minister of State for MSME Shobhaka Nandalaje will be the central returning officer for the elections to be held at the BJP state headquarters in Hyderabad. So these were the updates from Chennai, Bengaluru, Hyderabad. Over to you, Ravi, for the updates from Delhi, Mumbai, Kolkata.
जी बिल्कुल, शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज से आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के प्रतिनिधिमंडल में श्री गुप्ता के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और मुख्य सचेतक अभय वर्मा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सम्मेलन में संविधान विशेषज्ञों, सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ संसदीय अधिकारियों की सहभागिता होगी। इस अवसर का उद्देश्य बदलते सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संसद तथा विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली और सुदृढ़ बनाने पर संवाद को बढ़ावा देना है। इसमें दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पंजाब विधानसभाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि दिल्ली सरकार बहुत जल्द ही राजधानी में कृत्रिम वर्षा करने जा रही है, जिसे लगभग 4 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। श्री सिरसा ने यह जानकारी कल नेहरू पार्क में प्रदूषण को लेकर एक स्थलीय निरीक्षण के बाद दिया। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के साथ मिलकर नेहरू पार्क को एक क्लीन एयर जोन बनाने की संभावना का अध्ययन किया। ये पहल दिल्ली का पहला क्लीन एयर जोन बनने की दिशा में एक शुरुआती अध्ययन का हिस्सा है। वैसे शगुन, ये जो कृत्रिम वर्षा है ये अपने आप में बहुत ही कहना चाहिए ना, अनोखा अनुभव, विचित्र अनुभव है। आपने कभी इसका अनुभव किया, कभी देखी है आपने बनावटी वर्षा होते हुए?
I think in movies I have seen
movies like that.
Yes.
चलिए अब आप दिल्ली में देखने के लिए तैयार हो
जी।
कांवड़ यात्रा से जुड़ी तैयारियों पर दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि राजधानी में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांवड़ियों के लिए सरकार ने 3 अहम बदलाव किए हैं। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर कांवड़ यात्रा समितियों के खातों में सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से धनराशि सीधे उनके खातों में डालेगी। दूसरी ओर कांवड़ शिविरों के लिए 1200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई है और साथ ही बिजली की सिक्योरिटी भी घटाकर 25% कर दी गई है। इसके अतिरिक्त कांवड़ शिविर लगाने की अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC 5 जुलाई से 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन करेगा। ये महोत्सव नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित पालिका सेवा अधिकारी संस्थान PSOI में मनाया जाएगा और प्रत्येक दिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इस आयोजन में लोगों को देश भर से मंगाई गई आम की विस्तृत किस्मों को खरीदने का अवसर मिलेगा। साथ ही इसमें आमरस, अचार, गूदा और मिठाइयों जैसे आम आधारित उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे। आम उत्पादक, सहकारी समिति और विक्रेता इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 1 जुलाई तक ईमेल के माध्यम से अपनी रुचि की अभिव्यक्ति जमा कर सकते हैं और चयनित प्रतिभागियों को अपने आमों और संबंधित उत्पादों को दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने, बेचने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित स्टॉल और बुनियादी सुविधाएं निशुल्क प्रदान की जाएंगी। NDMC ने कहा है कि ये महोत्सव सांस्कृतिक और मौसमी उत्सवों को बढ़ावा देने के उनके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जो विभिन्न समुदायों को एक साथ लाते हैं और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाते हैं।
तो डिलीशियस मैंगो सीजन।
बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस आयोजन में जरूर जाएंगी और ढेर सारे आम खाकर वापस आएंगी।
लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ट्रूली आई एम।
चलिए बढ़ते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज मुंबई के विधान भवन में शुरू हो रहा है। सत्र की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार ने पारंपरिक हाई टी समारोह का आयोजन किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्कूलों में 3 भाषा फार्मूले की समीक्षा के लिए डॉ नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति की घोषणा की और पहले से संबंधित GR को रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने विपक्ष द्वारा इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने की आलोचना की और आरोप लगाया कि उनके पास विचारों की कमी है और वे केवल विरोध कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद थे। महाविकास अघाड़ी ने चाय पार्टी का बहिष्कार किया और सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंदी थोपने, मराठी की उपेक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विफल होने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का पहला पंजीकरण कल ठाणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और अन्य अधिकारी शामिल हुए। मंत्री सरनाईक ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि ये किसानों और औद्योगिक क्षेत्र दोनों के लिए वरदान साबित होगा, जो पूरे देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक बड़ा बदलाव लाएगा। वैसे सही बात भी है शगुन, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जो गाड़ियां आ रही हैं, 2-व्हीलर के बाद कारें और अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी आ रहा है, आ चुका है, तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है जो कि एक सुखद अनुभव देने वाला है।
Another feather in the cap of the technological advancement, I believe, yes?
बिल्कुल। बढ़ते हैं कोलकाता की ओर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव आज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 110वें स्थापना दिवस और पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उम्मीद है कि वे कालीघाट मंदिर जाएंगे। बाद में वे न्यू टाउन कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में जैविक विविधता और जलवायु परिवर्तन पर एक हैकाथॉन में भाग लेंगे। इसके बाद वे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 110वें स्थापना दिवस और एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2025 के समारोह में शामिल होंगे। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। समय बहुत तेजी से भाग रहा है शगुन, तो बढ़ते हैं आगे। श्रोताओं को बताते हैं कि वे सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री से रहने की संभावना है। वैसे आज मैं जब चला ऑफिस आने के लिए तो देखा सारी सड़कें गीली थी,
तो
मुझे लगा कि अभी जब हम चलेंगे तो फिर से तेज बारिश आ जाएगी।
And that wonderful smell also, that fragrance of rain, right?
गजब की fragrance होती है
बारिश की। Such a refreshing fragrance, I should say.
जो सौंधी वो महक आती है।
Yes.
मुंबई में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होगी। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 31 और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
And Ravi, it's much the same in other cities as well. First, talking about Chennai, it is expected to have generally cloudy sky and there is a possibility of light rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is also expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad, again, it is expected to have a partly cloudy sky and there is a possibility of rain or thunderstorm or dust storm there. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and the maximum will be 34 degrees Celsius there, Ravi.
और अब समय हो गया है शगुन देश दुनिया के इतिहास को जानने का और ये बताने का अपने श्रोताओं को कि आज इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले शगुन, हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें कि आज कई दिवस हैं भाई। आज सोशल मीडिया दिवस भी है, आज हूल क्रांति दिवस भी है, आज अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस भी है और
also,
आज ही अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस भी है।
जी, एंड आई विल एक्चुअली यू नो एलैबोरेट मोर ऑन वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे।
बताइए।
वेल, टुडे इट मार्क्स द 10th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, व्हिच इज अ ग्लोबल इवेंट डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एस्टेरॉयड थ्रेट्स एंड स्पेस साइंस। Well celebrated annually on June 30, this commemorates the Tunguska event, the powerful asteroid explosion, Ravi, that occurred over Siberia, Russia, on this day in the year 1908. This happened in
1908. Ji.
The blast it flattened around 2,000 square kilometers of forest and released energy equal to 185 Hiroshima bombs. Well, Asteroid Day, it raises awareness about asteroid risks and promotes investment in space science.
और मैं श्रोताओं को जानकारी दे दूं कि आज सोशल मीडिया दिवस है। ये दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो दुनिया भर में संचार को बदलने में सोशल मीडिया के गहन प्रभाव को मान्यता देता है। और हम सब जानते हैं कि आज जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा प्रभावशाली उपकरण बन गया है जो सहयोग, बातचीत और सामाजिक जुड़ाव का अभिन्न अंग हो गया है।
Very
और
relevant.
इससे पता चलता है कि आभासी और वास्तविक दुनिया की सीमाएं अब धुंधली हो रही हैं और लोग जो हैं वो डिजिटल माध्यमों से नए रिश्ते बना रहे हैं और समुदायों को मजबूत भी बना रहे हैं। और अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को, जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
First, I will talk about the year 1894. London's famous Tower Bridge opened across the Thames. In the year 1896, William S. Hadaway patented an electric stove in the US.
Gee.
And in the year 1905, 27-year-old Albert Einstein published his theory of special relativity, the relationship between space and time, in equation E equals to mc square.
Gee. Or... सन 1999 में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और नेशनल पार्टी के नेता टीम फिशर का इस्तीफा हुआ। सन 2002 में ब्राजील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबॉल के फीफा विश्व कप पर कब्जा किया। और सन 2005 में ब्राजील ने कन्फेडरेशन फुटबॉल कप जीता और 2006 में फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय किया। और आगे बढ़ते हैं, समय बहुत ही तेजी से भाग रहा है।
ऑफ कोर्स, यस।
बात करते हैं कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों की जयंतियों या उनके जन्मदिन के बारे में.
बिगिनिंग विद
दादा भाई नरोजी, जिनको भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है. आपका जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 मुंबई में, लेकिन निधन हुआ 30 जून 1917 मुंबई में ही. दादा भाई नरोजी दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे. श्री दादा भाई नरोजी का शैक्षिक पक्ष बहुत ही शगुन उज्जवल रहा. 1845 में एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक वे हुए. यहाँ के एक अंग्रेजी प्राध्यापक ने इन्हें भारत की आशा की संज्ञा दी और 1851 में गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार साप्ताहिक निकालना इन्होंने शुरू किया था.
Well, today we are also remembering John William Strutt, physicist. He received the Nobel Prize in Physics for his investigations for the densities of the most important gases and for his discovery of argon in connection with these studies. Also, Rayleigh scattering. This explains why the sky is blue. He studied and described transverse surface waves in solids, which is known as now Rayleigh waves.
और अब जयंतियों में बात करते हैं प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि नागार्जुन के बारे में, जिनका जन्म हुआ 30 जून 1911 और इन्होंने इस संसार से विदा ली 5 नवंबर 1998 को. नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा. शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय है. नागार्जुन का असली नाम वैसे शगुन वैद्यनाथ मिश्र था. हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया था और उनकी मुख्य रचनाओं में शामिल है रतिनाथ की चाची, बल चन्मा, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, दुख मोचन और वरुण के बेटे.
Well, today, let me now talk about a musician. We are remembering Chester Burton Atkins, also Chet Atkins. Well, yes, he is known as the country gentleman, and he has been primarily a guitarist and also played other instruments as well, like the mandolin also and the fiddle. And I have specifically chosen a guitar track for you listeners to listen in. This actually marks his very unique picking style. Well, today, listeners, it's also birthday of C.N.R. Rao. Chintamani Nagesh Ramachandra Rao, well, the chemist who has worked mainly in solid state and structural chemistry. Well, listeners, I would like to tell you all that he's one of the only three scientists who has been awarded the Bharat Ratna and is a towering figure in Indian science. And he began teaching at the Indian Institute of Science at a very young age and became its director by 50. Well, he has received over 86 honorary doctorates. And now I have chosen a specific, particularly, he was talking about science here. So listen into his voice. He is talking about science, how it inspires innovation.
Unka interview.
Ji.
Science is actually fundamental to everything. It is only based on science you develop new technologies. Innovation requires another kind of thing where your science technology efforts bring you something innovative, something that makes you profit, something that benefits society. There is a third thing altogether. They are all related to each other. Each requiring a new different type of effort.
और शगुन आज ही जयंती है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह की, जिनका जन्म हुआ 30 जून 1928 कच्छ गुजरात में और आपने इस दुनिया से रुखसत ली 24 अगस्त 2000 को. वे भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से एक थे और कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा और वर्ष 1954 में आई फिल्म नागिन के कुछ गीतों के उन्होंने जो है शगुन छंद जो है वो संगीतबद्ध किए थे.
मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल खा गया करार रे कौन बजा.
वैसे शगुन भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय भी जो है वो कल्याण जी को ही जाता है. वर्ष 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था.
किसी के इंतजार का दिल
यही नहीं, वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। और ये है वो गीत।
चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवा।
How beautiful and melodious this is, right? His medley.
जी, चलते चलते आज का विचार कि स्नेह अनकहे शब्दों का ऐसा संसार होता है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शगुन चोपड़ा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
नमस्कार।